शांति। अब तो नींद नहीं है, थकावट नहीं है, चाय पी के खुल गई ना नींद। हमारे बीच में आदरणीय जीतू भाई जी हैं, हम एक हाथ ताली से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1979 में आप परिवार सहित, आपके मम्मी पापा भाई बहनें सब ज्ञान में आए और आपकी उम्र उस वक्त केवल मात्र 4 साल, केवल 4 साल। जैसे छोटे बच्चे यहाँ आए हुए ना, आपके साथ भी आए हुए ना 4 साल की एक बेबी, तो 4 साल की उम्र में ही आप ईश्वरीय ज्ञान में मम्मी पापा के साथ आए और आने के पश्चात रेगुलर रहे, और रेगुलर रहने के पश्चात 32 साल की उम्र में अपना संपूर्ण जीवन शिव बाबा की सेवाओं हेतु माउंट आबू मुख्यालय जहाँ हम बैठे हैं आपने यहाँ समर्पित किया। और 1996 में आप यूथ विंग, जो हमारा युवा प्रभाग है, उससे जुड़े और उनके जितने भी प्रशिक्षण होते हैं उनका आयोजन आप करते हैं और उनको प्रशिक्षित करते हैं। साथ ही साथ आप काउंसलिंग और स्पिरिचुअल हेल्थ में मास्टर्स हैं। किसी व्यक्ति को गुस्सा आता हो, तनाव में रहता हो, चिड़चिड़ा हो, एनी फोबिया, कोई भी प्रकार का फोबिया हो, उसके लिए अगर किसी को काउंसलिंग चाहिए तो आप उसमें मास्टर हैं। बहुत अच्छी काउंसलर मतलब हैं आप, तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं टाइम लेकर के। उसके पश्चात यूथ विंग में जितनी भी यात्राएं निकली हैं, चाहे वो बस यात्रा है, चाहे वो पद यात्रा है, उसमें आपने बहुत अच्छे से रोल, लीडर का रोल अदा किया है। मुझे याद है 2006 में जब पद यात्रा निकली थी तो मैं भी साथ ही थी और आप हमारे मैनेजर थे और बहुत अच्छे से सारा कुछ मैनेज किया। उन दिनों मैंने आप में जो गुण देखे वो मैंने देखा, गंभीरता और रमणीकता, जो स्पेशली मम्मा में थे। मम्मा का गुण था, मम्मा गंभीर भी थी और रमणीक भी थी। ये दोनों गुण मैंने आप में देखे कि सब कुछ मैनेज करते हुए आप अंदर ही अंदर बाबा की याद में भी रहते और दूसरों को बाबा की याद दिलाते, और इसके साथ साथ आपको यूएसओ ने भी सम्मान दिया, यूएसए लंदन से आपको सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आपको सर्टिफिकेट दिया गया है। आपने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अगर ये मैं उपलब्धियां पढ़ने लग जाऊं तो मेरे ख्याल क्लास का टाइम निकल जाएगा, तो एक बार जोरदार तालियां आपकी इन उपलब्धियों के लिए। जहां जहां भी आप सम्मानित हुए हैं किया है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान ये है कि आप मुख्यालय में समर्पित हैं। सबसे बड़ा सम्मान ये है कि आपने दादियों के हृदय को जीता है। सबसे बड़ा सम्मान ये है कि आप निर्माणचित होकर के सेवा करते हैं। और सबसे बड़ा सम्मान यह है कि जो हम सब ब्राह्मणों के मुख में टोली जाती है, आप टोली किचन में सेवाएं देते हैं और दूसरों की सेवाएं लेते हैं। ये सबसे बड़ा सम्मान ब्राह्मणों का होता है। और साथ ही साथ आपकी जो खूबी है राजयोग का प्रयोग, कैसे किसी आत्मा के अंदर की बात जो है उसको अंदर ही अंदर खा रही है, वो दिल शिकस्त हो गया है, ऊपर नहीं उठ पा रहा है, उमंग उत्साह नहीं आ रहा है, तो कैसे उसको बातचीत करके शिव बाबा के साथ जोड़ना है, कैसा कैसा उसको प्रयोग कराना है, आप उसमें माहिर हैं। तो अभी आप, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे राजयोग के प्रयोग ये विषय हम सबके बीच में स्पष्ट करें।
ओम शांति। मधुबन बेहत के घर में आप सभी बैठे हैं, तो आपके अपने ही घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका यही घर है ना, मधुबन है? यहां मधुबन में रहते हुए योग लगाने की आवश्यकता पड़ रही है क्या? सोते ही योग लगता है। तो जो गीत सुना ना हमने, योगी जीवन, तो जब मधुबन में रहते हैं, भट्टी में आए हो, तो ऐसे जैसे कि यही योगी जीवन है। बाबा ने हमें योग मतलब क्या, याद, किसकी याद? आत्मा परमात्मा का मिलन। लेकिन संगम युग में उसको थोड़ा सा बाबा ने और नजदीक लेके आए, पुत्र पिता का संबंध। अपने पिता को याद करना मुश्किल लगता है क्या? बहुत इजी लगता है। और विशेष बात, केवल हम योगी नहीं है, राजयोगी है। तो राजयोग अर्थात ऐसा योग जो राजा बना देवे, ऐसा योग जो योग के प्रोसेस में ही राजा का अनुभव हो जाए, कोई कष्ट ना हो, राजा जैसा अनुभव हो जाए। योग पूरा होने के बाद, संपन्न होने के बाद भी ऐसे लगे हम मास्टर हैं, राजा हैं, और राजयोग कितना सहज रूप से बाबा सिखाते हैं। केवल योग नहीं सिखाते, लेकिन हमारा है राजयोगी जीवन। बाबा को याद कर ले। तो हमारा राजयोगी जीवन, राजयोगी जीवन में योग केवल बैठ के, कौन कह समझते हैं कि बैठ के बड़ा मजा आता है योग में, घंटा दो घंटा डेढ़ घंटा, किसको मजा आता है? अच्छा, और कौन कहते हैं कि बैठने में इतना मजा नहीं आता, हमको चलते फिरते हुए योग करने में मजा आता है? कर्म करते समय मजा आता है। अच्छा, ऐसे होता है कि हम योग करते उस समय तो मजा आता है, लेकिन जब कारोबार में चलते उस समय थोड़ा सा भूल जाते, होता है ऐसे? किस किस को होता है? तो चलो, जो राजयोगी है, राजयोग का अभ्यास तो सभी करते हैं ना, सभी करते हैं, कौन नहीं करता है? बाबा के सारे बच्चे हैं, तो बाबा सबको राजा बना दिया है, सबको राजयोग का अभ्यास करा दिया है, सब करते हैं। तो राजयोग के अभ्यास करने के बाद किसी को फिक्र होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, लेकिन किसको थोड़ी थोड़ी चिंता होती है। पूरे दिन भर में जीवन में चलते फिरते थोड़ा थोड़ा विचार चलता है, चिंता होती है, ऐसे कितने हैं? अच्छा, बाकी को नहीं होती है। चलो अच्छा है, जिनको नहीं होते वो कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंच गए। एक कोट याद आता है आपके, इसका वहां फरीदकोट का ही है, फिकर करे वो बावरा, फिकर करे वो बावरा, जिकर करे सौ बार, उठ फरीदा जिकर कर तो फिकर करे वो आप। आपके फरीद बाबा है ना फरीदकोट के, तो उनका कोट है ये। तो देखो, फरीदकोट को एक पहले से ब्लेसिंग मिल गया है ना। कितने सालों पहले एक संत ने, सूफी संत ने का कोट किया है कि अगर हम सिमरन करते रहेंगे तो सारी फिकर कौन करेगा? बाबा करेगा ना, ईश्वर करेगा। तो सब उसके हवाले कर देने से सारी फिकरतें खत्म हो जाती है। लेकिन राजयोगी आत्माओं का एक छोटा सा एक विशेषता भी है, वही कमजोरी भी है। जब किसी दूसरों के सामने परिस्थिति आती है ना, तो हम बहुत अच्छे से उसको ज्ञान सुनाते हैं। कोई बहुत दुखी हो गया, बेचारे के घर में किसी की डेथ हो गई, तो हम जाएंगे भाई बाबा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। किसी को कुछ बीमारी हो गई तो हम कहते हैं कि भाई बाबा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। किसी के घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई तो भी हम कहते हैं बाबा पे छोड़ दो, बाबा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वही परिस्थिति अगर खुद पे आती है तो फिर क्या कहते, विचलित हो जाते हैं। फिर जितना भी अभ्यास किया होता है ना, वो अभ्यास बाजू में रह जाते हैं और दूसरे संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। होता है ऐसे, होता है ऐसे, ज्यादा सोच चलने लग जाती है, बहुत कुछ सोचने लगते हैं। तो अभी ये जो 3 मिनट आपको देते हैं हम, 3 मिनट में आपस में आप चर्चा कीजिए अच्छे से खुल के कि राजयोग तो हम करते हैं लेकिन कहाँ का आवश्यकता होती है उसका प्रयोग करने की। हम दूसरों को ज्ञान देते हैं तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति होती है, मेरे ऊपर आई हुई चाहे किसी के ऊपर आई हुई, तो आप आपस में शेयर कीजिएंगे, अच्छे से आवाज से भी शेयर कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, जहां किसी की डेथ हुई वहां सकाश देने की आवश्यकता है, वहां प्रयोग करने की आवश्यकता है, जहां अपने बच्चों को कोई नौकरी मिलती है तो भी हम सोचते हैं ना कि योग का प्रयोग करें, जहां बीमारी हुई, कोई बीमार है, खुद बीमार है, दूसरा कोई बीमार है, तो हम सोचते कि उस व्यक्ति के लिए थोड़ा सा योग का प्रयोग करें। ऐसे क्या क्या चीजें है थोड़ा सा आपस में निकाले, कम से कम 10 चीजें तो निकाले, ठीक है। अभी अच्छी तरह से आप आपस में बात कर सकते हो, है ना, एकदम से शांति से नहीं बैठो, आपस में बात करो और अपने डायरी होगी ना, डायरी में निकालो कहाँ का प्रयोग करना पड़ेगा। भाई लोग भी आपस में बात करो, निकालो। हो गया, बहुत सारी चीजें निकलती होगी, बहुत सारी चीजें निकल रही होगी, है ना। हर कदम पर कुछ न कुछ ऐसी बात निकलती होगी जिसको योग का प्रयोग करना है। उसमें से एक जिसको आप समझते कि सबसे ज्यादा आवश्यकता है, एक चीज आप अपने लिए ले लो कि मुझे सबसे पहले यहां से जाने के बाद इसको बहुत आवश्यक है, यहां ये राजयोग का प्रयोग करना है। वो घटना सामने लाओ, हो सकता है कुछ विचलित करने वाली भी घटना हो, है ना, हो सकता है कुछ मुश्किलात वाली भी घटना हो, आपके आंखों के सामने लाओ। हर एक के जीवन में होता है कि यहां से जाने के बाद मुझे योग का प्रयोग करना है। हाँ, अपने अंदर की कमी को दूर करने के लिए, अपना स्वभाव बदलने के लिए, दूसरे का स्वभाव बदलने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए, कुछ इविल सोल का प्रभाव कम करने के लिए, जो कुछ भी आपको लगता है ना, वो आप अपने आंखों के सामने लाओ, वो घटना को सामने लाओ। हो सकता है अंदर थोड़ा सा बेचैनी हो जाए। हाँ, तो वो आपसी संबंधों का भी, जो कुछ भी है ना, हर के पास बहुत सारा होगा, आपसी संबंधों का होगा, बहुत कुछ चीजें होगी, तो उसमें से अपने लिए एक वो एक घटना सामने लाओ कि बार बार ये प्रॉब्लम बहुत होता है। हाँ, पैसे की प्रॉब्लम, हर एक का अपना अपना होगा, एक लाओ। ठीक है, अभी सब खड़े हो जाओ। अच्छा, सब योग करते हैं ना, अभी खड़े हो जाओ। अपना ये अंगूठा ऊपर करके आंखों के सामने लाओ और राइट साइड घुमाओ। सब लोग अपने राइट साइड जितना हो सकता है, आंखें भी जावे अंगूठे के तक, जो लास्ट पॉइंट आएगा ना उसको नोट कर लेना। गर्दन घुमाओ ना, हाँ, जितना घूमता है, नहीं बॉडी नहीं घुमाओ, केवल गर्दन। ठीक है, वो पॉइंट याद रखना। ठीक है, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हर किसी को वो पॉइंट याद रखिए। अभी देखिए, आपने अपने अपने जीवन में आई हुई कोई एक परीक्षा, कोई एक कठिनाई को याद किया, और हम बाबा के बच्चे हैं, हम रोज योगाभ्यास करते हैं, तो हमारे पास वो शक्ति है जो हम उसको डील कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, अपने अपने तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, एक मिनट का एक योगाभ्यास करेंगे। ठीक है, अपने आप को एकदम से रिलैक्स कर लीजिए। एकदम से शरीर के बीच में चमकती हुई आत्मा, एक सेकंड में इस शरीर से डिटैच, मैं आत्मा परमात्मा के साथ शिव बाबा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, वो जो घटना उसे याद कीजिए। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, उस घटना को सकाश देने का प्रयास कीजिए। जो प्रॉब्लम है वो सुलझ रहा है, और समस्या समाप्त हो रही है। आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, फिर से गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ, शिव बाबा और मैं आत्मा मेरा हाथ ब्रह्मा बाबा के हाथ में, और तीनों आत्माओं को देखिए, परमात्मा, ब्रह्मा बाबा और मेरी आत्मा। सब कुछ भूलकर केवल बाबा और हम। इसी आत्मस्मृति में खड़े हो जाइए। फिर से वही एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर से राइट साइड में जाइए जितना जा सकते, जितना जा सकते मैक्सिमम। फिर से पूर्व स्थिति में आकर बैठ जाइए। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हमने, प्रयोग। आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने नोटिस किया कि मेरा हाथ पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना? हमारा विजन भी बढ़ गया, हमारा हाथ भी बढ़ गया। आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने ये नोटिस किया कि शुरुआत में जब हम खड़े हुए उसकी अपेक्षा अभी जब खड़े हुए तो हमारा स्पीड एकदम कम था, हल्के से खड़े हुए, पहले तो एग्जाम से खड़े हुए थे ना, तो किसने अनुभव किया कि आराम से खड़े हुए हम? देखो इससे क्या साबित होता है कि हम जब किसी घटना से कनेक्ट रहते हैं तो हमारी जो डीलिंग पावर है, एफिशिएंसी है, वो लिमिटेड होती है। जब उस घटना से हम डिटैच हो जाते हैं और बाबा के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी उस परिस्थिति को हैंडल करने की शक्ति और बढ़ जाती है ना? बढ़ जाती है। थ्योरेटिकल नहीं, आपने प्रैक्टिकल किया ना अभी ये। तो सबसे पहला बेसिक जो है राजयोग के प्रयोग का, कि हम जिस परिस्थिति में हैं हम क्या करते हैं, बार बार उस परिस्थिति को ही सामने लाते हैं, उस परिस्थिति के चित्र को ही हमारे सामने लाते हैं। इसलिए हम दिनों दिन वीक हो जाते हैं और फिर हम अब उसी में उलझते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। हैंडल करने की जगह पे, उसको सॉल्व करने की जगह पे खुद दुखी हो जाते। लेकिन बाबा ने इतना सुंदर युक्ति हमको बताई है कि एक सेकंड में शरीर से परे, तो शरीर से परे मतलब परिस्थिति से भी परे है ना? तो जब हम ये अभ्यास करना शुरू करेंगे तब हम योग के प्रयोग कर सकते हैं। तब तक तो केवल विजुलाइजेशन तक रहेगा कि बाबा के सामने बैठे हैं, किसी आत्मा को इमर्ज कर लिया, खुद को इमर्ज कर लिया, उसको सकाश दे रहे हैं। वहां तो अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ न कुछ किसी के लिए किया, कुछ न कुछ स्व के लिए किया, कुछ न कुछ विश्व के लिए किया। लेकिन वहां से उठ के जाते हैं तो उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं। इसलिए बेसिक प्रिंसिपल राजयोग के प्रयोग का है कि हम उस परिस्थिति से डिटैच हो जाए। और उसके लिए सबसे सहज साधन है, बाबा ने चार धाम दिए। आप तीन दिन से चार धाम कर रहे हो, आपको खुद ही अनुभव आता होगा। जैसे हिस्ट्री हॉल में जाते हैं, हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते ही सारे विचार एकदम जैसे व्यर्थ संकल्प होते हैं ना, एकदम से स्टॉप हो जाते हैं। बाबा के कमरे में जाते हैं तो एनर्जी अनुभव होना शुरू हो जाती है। झोपड़े में जाते हैं तो बाबा के नजदीक की फीलिंग आती है, होता है ना ऐसे? तो ये जो एक्सपीरियंस है ना तीन दिन में लिया हुआ, आप अपने साथ कैरी करके ले जाइए। जब भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो, जब भी आपको लगता है कि नहीं मुझे आवश्यकता है कुछ प्रयोग करने की, आप सबसे पहले तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाइए। उससे डिटैच हो जाएंगे ना, तब आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि परिस्थिति क्या है। देखिए, अगर किसी को कुछ बीमारी होती है ना, जैसे किसी को कैंसर हुआ, तो कैंसर होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं हम। डॉक्टर क्या करते हैं, केवल कैंसर को देख के दवाई नहीं लिख के देते, वो पहले आपकी बात सुनेंगे, फिर उसके बाद में पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे कि अच्छा मुझे ये डाउट है ना, तो सबसे पहले टेस्ट ये होनी चाहिए, फिर ये टेस्ट होनी चाहिए, फिर ये टेस्ट होनी चाहिए, फिर उसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि कैंसर है तो कौन से प्रकार का है, और उसके बाद में वो दवाई देते हैं। कोई गाड़ी खराब होती है, हम गाड़ी के ले जाते हैं मैकेनिक के पास, तो मैकेनिक भी क्या करता है कि नहीं मुझे पहले ट्रायल लेनी पड़ेगी या इंजन चालू करना पड़ेगा, फिर वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उसके बाद में रिपेयरिंग का काम शुरू करते हैं, तब गाड़ी व्यवस्थित ठीक होती है। तो वैसे ही ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें पूरी विधि अगर फॉलो करेंगे तो उसका फल मिलेगा। कई बार हम क्या करते हैं ना कि अच्छा अचानक से कुछ आता है, अचानक से हम सोचते हैं कि चलो अभी बैठते हैं और इनको सकार देना शुरू करते हैं, वो भी अच्छा है, बाबा ने गिफ्ट दिया है, बाबा उसमें एनर्जी भी करते हैं। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना कि कई बार परिस्थिति ऐसी आती है जो बाबा स्वयं वो कार्य करा लेते हैं, हमारा उसमें कुछ रोल नहीं रहता है, लेकिन बाबा ने हमें सभी को इतना सक्षम बनाया है कि हम दूसरों को भी उस व्याधि से, उस दुख से मुक्त कराने के एक मददगार बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी विधि फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली स्टेप ये हुई कि हम उससे डिस्कनेक्ट कितने जल्दी होते हैं। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हॉल में आप आंखों के सामने बाबा के सामने आ जाइए, हिस्ट्री हॉल में आ जाइए, बाबा के हाथ में स्विच दे दीजिए कि बाबा आज ये स्विच आप ऑन करो, मेरे विचार बंद। पॉसिबल है विचार बंद करना, पॉसिबल है, हाँ या ना? विचार बंद करना पॉसिबल तब है जब हम उन विचारों को कुछ परिवर्तन करें। केवल स्विच ऑफ करने से नहीं होगा, लेकिन जो सामान दिए हैं सामानों को हमारे विचारों में लाना पड़ेगा, तब वो हम उससे डिस्कनेक्ट हो पाएंगे स्थिति से। जो प्रोटोकॉल है योग के प्रयोग का, तो सबसे पहला होता है कि विचारों में प्रयोग करता, क्योंकि विचारों के द्वारा संकल्पों का प्रयोग, फिर होता है वाणी के द्वारा प्रयोग, फिर कर्मों के द्वारा। लेकिन कर्मों के द्वारा प्रयोग तब होगा जब हम जिस परिस्थिति से पहले डिस्कनेक्ट होना सीख जाएंगे, उससे न्यारा होना सीख जाएंगे, डिटैच होना सीख जाएंगे। जब डिटैच होना सीख जाएंगे, देखिए हमारी जो दादियां थी, आप लोग तो पंजाब से हो, वे बॉर्डर एरिया से, तो आपको ज्यादा पता है कि 47 में क्या माहौल था ना, कितना भयानक माहौल उस समय था। लेकिन हमारी दादियां 14 साल की तपस्या में बैठी हुई थी, उनको बाहर की दुनिया का कुछ भी पता नहीं, बाबा की याद में मस्त है, और वही जो बल उन्होंने उस समय जमा किया वो अभी तक हम सभी को मिला के यज्ञ चला रहे हैं, है ना। तो उस समय बाबा ने उनको दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद परमात्मा के साथ उनका योग लगा दिया। ये सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने है, सैंपल हमारे सामने है कि कैसे हम परिस्थिति से डिस्कनेक्ट होकर उसी परिस्थिति के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते। दूसरी बात आती है, जब हम कर्म से डिटैच होते हैं तो होता है हमारा कर्मणा योग शुरू हो जाता है। तो हमारे कर्मों में कैसे योग का प्रयोग करना शुरू करें, तो हमारे कर्म क्या होते हैं, रोज की रूटीन होती है, सवेरे उठना है, खुद को तैयार करना है, भोजन करना है, ड्यूटी करनी है, ये सारे हमारे रूटीन वाले कर्म हैं। लेकिन उन कर्मों को भी हम बाबा के साथ अगर जोड़ देते हैं तो कर्मयोग हो जाता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं, हमारे दादियों का ही। मैं मधुबन में टोली बनाने की सेवा करता हूँ, तो टोली किचन में एक दिन हम लोग टोली बना रहे थे, मकई का चिवड़ा, जो कॉर्नफ्लेक्स होता है ना पीला वाला, मकई का चिवड़ा बना रहे थे। तो उसी समय हमारा जो किचन है, टोली किचन आपने देखा होगा, तो टोली किचन के सामने का ही जो रूम है, वहां हमारी दादी चंद्रमणि जी और दादी मनोरिंद्रा जी, वो दोनों का डाइनिंग हॉल होता, तो तीनों टाइम वो भोजन करने वही आते थे। तो जब आएंगे तो किचन में जरूर चक्कर लगाएंगे, तो मैं मक्की चिवड़ा बना रहा था तो दोनों दादियाँ आ गई और वहाँ खड़ी हो गई। फिर मनोहर दादी जी ने मुझे बुलाया और मुझे पूछा कि क्या बना रहा है। तो मैंने कहा दादी मकई का चिवड़ा बना रहा हूँ। तो दादी दोबारा चंद्रमा दादी जी की तरफ देखा फिर दोबारा पूछती है कि नहीं क्या बना रहा है। तो मुझे ऐसे लगा शायद दादी को समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा थोड़ा सा जोर से बोला दादी मकई का चिवड़ा बना रहे। तो फिर से दोनों दादियों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो मुझे थोड़ा सा ये लगा। फिर मैं छोटा तो था उस समय, ये ज्यादा नहीं थी, तो चंद्रमणि दादी जी की तरफ ऐसे देख रहा था। तो दादी ने बड़े प्यार से बोला, दादी बोलती है कि ऐसे है तुम जो बना रहा है ना वो पहले बाबा का भोग है, बाद में वस्तु है। तो मकई के चिवड़ा तो बाद में आएगा लेकिन पहले बाबा का भोग है। तो जब तुम सोचोगा कि मैं बाबा का भोग बना रहा हूं तो तुम्हारा योग बाबा के साथ जुड़ा रहेगा और वो जो एक पीस भी कोई खाएगा तो उसको बाबा की शक्ति मिलेगी। तो जब हम कर्म की एक एक स्थूल और छोटी छोटी बात को बाबा के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वही हमारा कर्म योग हो जाता है। और जब हम हमारे कर्मों में ये योग करना प्रयोग करना सीख जाते हैं ना तो हमारे कर्म सुपीरियर हो जाते हैं। हम देखते हैं ना इतने सारे हमारे जो बड़ी बहनें हैं दादियां हैं कितना सारा मैनेज करती है, कितना इजीली सब कुछ अपना स्थिति बना के रखकर भी सब कुछ मैनेज करती है, कितना ऊपर नीचे होता है। तो उसके पीछे का वही होता है कि उनका हर कर्म सेवा प्रति है। दादी प्रकाश मणि जी एक बार डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस में बैठे थे तो उस समय दादी ने डॉक्टर्स को भी कहा कि भले आप वहां सर्जरी कर रहे हो, किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहे हो, लेकिन हमेशा यही समझो, जबकि वो नॉन बी के डॉक्टर्स थे, वो उनको कहा कि हमेशा यही समझो कि ये भगवान का कार्य है, बस मेरे हाथ से हो रहा है। तो जब इस तरह से रूटीन कार्य में योग को लाते हैं तो वो होता है हमारा कर्मणा योग, कर्म योग। और कर्म योग के आधार से ही हम दूसरों को कुछ ना कुछ गाइड कर पाएंगे, दूसरों को संभाल पाएंगे, नहीं तो हम उनके कर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं। हम जाते तो है उनकी हेल्प करने के लिए लेकिन कभी कभी उनके प्रभाव में हम आ जाते हैं, इसलिए हमको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। तो बाबा ने दादियों ने इतना सुंदर तरीके से हमको अपने चाल चलन और चरित्र से सिखाया है कि हर कर्म को बाबा के साथ कनेक्ट कर लो। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे ना स्नान भी कर रहे हैं तो नहीं, शिव बाबा के लिए मेरे रथ को तैयार कर रहा हूं, ऐसे बाबा समझते थे। एक बार हम कहीं गए तो एक बड़ी बहन हमारे सीनियर बहन हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो उनसे मिलने गए तो हमने पूछा कि दीदी आप कैसे हो, तो एकदम मैं तो बहुत मजे में हूं कहा। अच्छा दीदी आप यहां कैसे आए, तो उन्होंने सिंपल बात बोली, सभी बहनें हमारे बहनों के मुख से वही बात निकलती है, नहीं बाबा की सेवा करने के लिए बाबा ने यहां पहुंचा दिया है। वो सर्जरी स्थूल रूप की लेकिन सेवा के भाव से वहां पहुंचे तो उनको पेन नहीं होता है लेकिन वहां रहने के कारण पूरे स्टाफ की पूरे हॉस्पिटल की सेवाएं हो जाती है। तो कर्मों को हम बाबा के साथ कनेक्ट करने से सेवा स्वतः ही हो जाती है, हमें किसी को मुख से बोलना नहीं पड़ता है। फिर दूसरी चीज आती है मुख, जो बोल हमारे योगी व्यक्ति है ना, योगी व्यक्ति के कर्म कैसे होंगे वो भी आप समझ सकते हैं कि कर्मों के आधार से जान सकते हैं ये योगी है। वैसे ही योगी के बोल होते हैं, योगी के बोल कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए, मीठे, केवल मीठा बोलने से योगी कहेंगे, ज्ञान युक्त होने से योगी कहेंगे, वो तो ज्ञानी कहेंगे, कम बोलते हैं धीरे बोलते हैं। लेकिन ऐसे तो योग न करने वाले भी लोग होते हैं जो अपने आप में रहते हैं। योगी के सामने जाएंगे ना तो हमेशा उनके मुख से वरदानी बोल ही निकलेंगे। भाई हर एक के प्रति शुभकामना शुभ भावना, हमेशा दूसरों का भला हो जाए ऐसे बोल उनके मुख से निकलेंगे। हमारा पूरा ये यज्ञ चल रहा है, सेवाएं शुरू हुई। सेवाओं में शुरुआत में दादियां यहाँ से सब जगह गई, और आप तो पंजाब से हो तो यज्ञ की सेवाओं की शुरुआत ही पंजाब से हुई है। तो ये जो हमारी पुरानी दादियां है, दीदियां है, इन्होंने जो सेवाएं शुरू की ना, वो अपने वरदानी बोल और मधुर बोलों के द्वारा सेवा शुरू की। उस समय तो किसी को ये भी नहीं पता था कि भगवान क्या है, बाहर दुनिया को नहीं पता था, कितना विरोध भी होता था, कितना तकलीफें भी होती थी, लेकिन इन महान आत्माओं के मुख से हमेशा ही वरदानी बोल निकलते थे और उसी के आधार से ये सेवाएं शुरू हुई। तो हमारे मुख से भी जो भी बोल निकले वरदानी निकले, लेकिन मुख से वरदानी बोल कब निकलेंगे? जब हम योग में होंगे। और अपने गुणों को याद करेंगे। ये सब करने के लिए क्या आवश्यक है? बाबा से कनेक्ट होगा, लेकिन हम अभी बैठे आपस में गपशप लगा रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे वरदानी बोल निकलते तो बाबा की याद तो उसमें गपशप में मिक्स हो जाती है। उसके लिए भी वही आवश्यक है, जैसे कर्मों के लिए आवश्यक है वैसे बोल के लिए भी आवश्यक है वो जो एक सेकंड का स्टॉप, एक सेकंड का पॉज। कुछ भी बोलने से पहले एक सेकंड रुक जाए। जब ये आदत हमको लग जाएगी ना एक सेकंड रुकने की, तो स्वतः ही उस सेकंड में बाबा की याद आएगी। जब बाबा की याद आएगी तो फिर हमारे मुख से जो बोल निकलेंगे वरदानी बोले निकलेंगे, बाबा का ज्ञान ही निकलेगा। अगर हम वो पॉज नहीं लेंगे, अगर हम उसमें स्टॉप नहीं करेंगे, जो आया तुरंत रिएक्ट करके बोल दिया, तो जो परिस्थिति है, जो फ्लो चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसके आधार से हमारे बोल भी निकलते जाएंगे। फिर कई बार ऐसे होता है बाद में हमको याद आता है, अरे यार मुझे वो चीज नहीं बोलनी चाहिए, है ना, होता है ना, कई बार बोलो बोलते हम बोल देते हैं, लास्ट में याद आता है कि मुझे वो चीज नहीं बोलनी चाहिए, शायद मैं नहीं बोलता तो भी चल जाता। ये जो हमारा बाद में हम उसको डिसेक्शन करते हैं, उसके पहले ही एनालिसिस हो जाएगा कि मुझे क्या बोलना है, और तो हमारे बोल वरदानी बोल बन जाएंगे। वरदानी बोल होने के लिए फिर आती है हमारी पावरफुल मनसा। सबसे ज्यादा योग का प्रयोग की आवश्यकता अगर है तो हमारे संकल्पों पे है, हमारे विचारों पे है। सृष्टि की रचना ही कहते हैं ना, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की? संकल्प के आधार से की। तो ब्रह्मा के संकल्प और हमारे ब्रह्मा समान संकल्प, जब ऐसे संकल्प होंगे तो कोई भी चीज को परिवर्तन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जब हम पूरी संपूर्ण सृष्टि का ही परिवर्तन करने के लिए निमित्त है, तो किसी एक परिस्थिति, किसी एक आत्मा, किसी एक संस्कार को परिवर्तन करने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन जरूरी है कि वो संकल्पों को, विचारों को परिवर्तन करें। विचारों को कैसे परिवर्तन करेंगे? विचारों को कैसे परिवर्तन करें? श्रेष्ठ विचार कहां से मिलेंगे? बाबा के ज्ञान से मिलेंगे। लेकिन परिवर्तन कैसे होगा? उसके चिंतन मनन करते रहेंगे। कई बार हम ना रोज मुरली सुनते हैं, सभी सुनते हैं ना रोज मुरली। मुरली में बाबा हर समस्या का हल बता देते हैं, लेकिन हम सबकी आदत क्या होती है, बाबा के अच्छे अच्छे पॉइंट्स जब मुरली सुनते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हैं, उस समय हम उनको नोट करते हैं। करते हैं सभी लगभग, अच्छे लगते हैं, नोट करते हैं, लेकिन वो नोट किए हुए पॉइंट डायरी में रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे कब? कभी कुछ ऐसे दीदी कहेंगे कि आपको एक पे इस पे एग्जाम देनी है, या हम रात शाम को आपको पूछेंगे आज के बाबा ने क्या कहा, तो उसको थोड़ा सा रट लेंगे, है ना, रट लेंगे। लेकिन रटने से संकल्प परिवर्तन नहीं हुए, विचार परिवर्तित नहीं हुए, केवल ज्ञान का भंडार हुआ। चिंतन करने से भी उसको थोड़ा पॉलिश हुआ कि मैं कैसे यूज कर सकता हूं, अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने से बढ़ेगा, एक राइट है, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे? देखो ये जो शब्द है ना, किंतु, परंतु, इफ, बट, ये जो शब्द है नकारात्मक शब्द है, राइट? मानते हैं ना सभी, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसे हो गया ना, ये जो बोलते हैं नकारात्मक शब्द है। लेकिन उन शब्दों को ही हम यूज करके हमारे विचारों को परिवर्तन कर सकते हैं। सामने कोई व्यक्ति आया, गुस्से वाला व्यक्ति आया, तुम्हारा पहला थॉट आता है ये तो बड़ा गुस्से वाला है ना? आता है, नेचुरल है, आना ही है वो, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, ये थॉट आना ही है। हम ये नहीं कह सकते कि थॉट आएगा ही नहीं, लेकिन जब जैसे विचार आएगा वैसे हम उसको परिवर्तन कर देवे। हाँ, ये गुस्से वाला व्यक्ति है लेकिन अभी बाबा की मदद से परिवर्तित हो रहा है। मुझे बीमारी है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, ठीक है, मान रहा हूं बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है ना। ये अगर हम अपना ऐसे कॉन्शियसली एफर्ट लगाएंगे ना, सोच समझ कर उसको परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, सोच समझ कर उसको परिवर्तन करना शुरू कर देंगे, तो बाद में ऐसे होगा कि अपने आप ये चीज नेचुरल हो जाएगी। जब हम लोग ड्राइविंग सीखते हैं ना, जिनको ड्राइविंग आती होगी उनको पता होगा, ड्राइविंग सीखते उस समय कितना सोचते हैं, कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, स्टीयरिंग कैसे घुमाना है, कहाँ से गाड़ी निकालना है। फिर धीरे धीरे स्टीयरिंग के गियर के ऊपर अपने हाथ जाने लगता है। फिर एक समय ऐसे आता है कि अचानक कुछ भी आ जाए, अचानक ब्रेक दब जाएगा, अचानक स्टीयरिंग मुड़ जाएगा, वो नेचुरल हो जाएगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत वहां से हुई कि उसको पहले विचार दिया, नहीं मुझे लेफ्ट में मुड़ना है तो स्टीयरिंग ऐसे घुमाना है, ऐसे क्लच दबाना है, ऐसे ब्रेक दबाना है। जब वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो नेचुरल हो जाता है। वैसे ही विचारों का है कि विचार आएंगे लेकिन विचारों को परिवर्तन करना किसके हाथ में है? सोच समझकर परिवर्तन करना शुरू करेंगे तो वो परिवर्तित होंगे। और वो क्यों, कौन कर सकता है? सोच समझकर परिवर्तित कौन कर सकता है? दो ही लोग कर सकते हैं, केवल और केवल स्वयं ही कर सकते हैं। देखो बाबा आते हैं हमारे लिए, है ना, हम बच्चों का जीवन बदलने के लिए। बाबा ने जिस समय बाबा की नजर मुझ आत्मा पे पड़ी उसी समय मुझे वरदान मिल गया कि ये आत्मा परिवर्तन होने वाली है ना। तभी भगवान की नजर पड़ी, बाबा की नजर पड़ी। लेकिन ड्रामा में हरेक का पार्ट है और वो पार्ट हरेक के अपने हाथ में है ना। ऐसे तो है नहीं कि कहीं महाराज के पास गए, माथे पे हाथ रख दिया, उसने बोल दिया हो गया। तो भगवान का, बाबा का जो वरदान है तभी फलीभूत होगा जब हम खुद उस वरदान को फलीभूत करना चाहेंगे। तो हम अपने विचारों को परिवर्तन करना शुरू करेंगे तो हमारे विचार परिवर्तित होंगे, तो हम दूसरों को सकाश देने के लायक बन जाते हैं। तो हमारे इतने श्रेष्ठ विचार बन जाएंगे तो उसके बाद में हमारे बोल कैसे निकलेंगे? कल्याणकारी बोल निकलेंगे, जब वरदानी बोल निकलेंगे, और जब वरदानी बोल निकलेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म होंगे, कि हमारे हर कर्म से दूसरों को सुख मिलने की अनुभूति होगी। और जब हम सुख देने के लायक बन जाएंगे तो हमारी बात प्रकृति भी सुनेगी, हमारी बात आत्माएं भी सुनेंगे, हमारी बात हम खुद भी सुनेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले विचारों का परिवर्तन, और बाबा ने इतना सहज रीति से हमको करके दिया है, इतना सहज रीति से सारी स्टेप्स बताई है, जैसे कहा ना कि पूरा प्रोटोकॉल। तो अभी आप क्या कीजिएगा, अपने डायरी में चार चीजें नोट कीजिए, उसका डिटेलिंग आप अलग से करना, क्योंकि प्रयोग है ना, प्रयोग के लिए। देखो प्रयोग ऐसी चीज होती है, अगर सिस्टम सही है, स्टेप वाइज आप जा रहे हो, तो आप एक बार करो, 100 बार करो या 1000 बार करो, रिजल्ट वही आएगा, सेम आएगा, है ना। तो जरूरी है कि हम वो स्टेप, वो फॉर्मेट हम अपने जीवन में सेट कर लिए, हमारे पास वो फॉर्मूला हो, वो फॉर्मूला हो जाए तो चाहे परिस्थिति कोई भी आ जाए फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो आपने अभी एक तो चुनी हुई है ना, जो परिस्थिति होती है कि किस परिस्थिति पे मुझे विजय पाना है या किस परिस्थिति के ऊपर मुझे प्रयोग करना है, योग के प्रयोग करना है, ठीक है। अभी उस परिस्थिति से मैं कितने सेकंड में डिटैच हो सकती हूं, उसके लिए मुझे क्या युक्ति अपनानी है। युक्ति दूसरा होगा युक्ति, डिटैच होने की युक्ति। तीसरा, जब डिटैच हो जाएंगे तो मुझे कौन सा स्वमान उसमें अप्लाई करना है। कोई कमजोर आत्मा है तो उसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, कोई क्रोधवश आ रहा है हमारे अंदर का क्रोध को ये करना है तो मैं लवफुल, लवफुल प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, जो भी आपको लेना चाहिए। क्योंकि देखो कोई गुस्से वाला व्यक्ति आता है ना तो उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है प्यार की, वो इतना कमजोर हुआ पड़ा रहता है इसलिए वो अपने कमजोरी गुस्से के द्वारा प्रकट करता है। वो अंदर ही अंदर रोता है लेकिन बाहर से दिखता है कि उसका चेहरा लाल हो गया, तो उस समय उसको तो ये बहुत आवश्यक है कि उस समय कौन सा समान या कौन सी स्थिति मुझे बनानी है मैं समझ पाऊं, ठीक है। फिर जो समान ले लिया तो उस समान को मेरे मनसा में, मतलब मेरे विचारों में, मेरे बोल में और मेरे कर्मों में मैं कैसे लाऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने समान ले लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो उसके बाद मेरे विचार कैसे चलने चाहिए, कैसे चलेंगे है? तो हम अपने आप ही देखें, हर किसी का अपना अलग होता है। हम अपने आप देखो, बाबा ने हमको सबको सेल्फ डिपेंड बनाया है कि हमको किसी के आधार लेने की आवश्यकता नहीं है, हम किसी के आधार में जीने वाले नहीं है, एक भगवान मेरा आधार है। लेकिन भगवान अपने आप हम किसी को सर्व को एक स्वयं सिद्ध बना लेते हैं, हम स्वयं सिद्ध है। तो जो समान है, समान के बाद मेरे विचार कैसे होने चाहिए, तो जो मेरे कमजोर विचार आ रहे, व्यर्थ विचार आ रहे या निगेटिव विचार आ रहे उस परिस्थिति के समय, उसको मैं कैसे परिवर्तन कर सकती हूं। फिर उसके बाद में मेरे बोल कैसे निकलने चाहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के बोल कैसे होंगे, कैसे होंगे शक्तिशाली, कमजोर तो होंगे ही नहीं, खुद को भी शक्ति का अनुभव हो जाए और सामने वालों को भी शक्ति का अनुभव हो, ऐसे बोल होंगे। फिर मेरे कर्म कैसे होंगे, हमेशा दूसरों के लिए सहायता देने वाले, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, सामने वाला कमजोर है उसको सहयोग की आवश्यकता है। एक छोटा सा आपको बात सुनाता हूं। देखो अपना इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार है ना, लौकिक परिवार में कितने लोग होते हैं, चार लोग, आठ लोग, दस लोग ज्यादा ज्यादा, लेकिन कितना बड़ा परिवार है। हमारी दादी जी भी हमेशा कहती थी, दादी प्रकाशमणि जी हमेशा कहते थे कि मेरा परिवार इतना बड़ा है जो मैं एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए प्लेन ही यूज करती हूं। कहीं भी जाओ, किसी भी कोने में जाओ, ना ब्राह्मण परिवार मिलता है। तो ब्राह्मण परिवार जब इतना अच्छा है, बड़ा है और ये केवल संगम युग पे ही मिलता है, तो इस परिवार के प्रति भी हमारा कुछ तो फर्ज है। तो ये जो कर्मणा की बात करते हैं, हम दूसरों को तो सकाश दे रहे हैं, लेकिन हमारे ब्राह्मण परिवार में भी हम छोटी छोटी एक दूसरे को हेल्प अगर करना शुरू करेंगे ना, तो ये और भी संगठन स्ट्रांग हो जाएगा। हेल्प मतलब स्थूल हेल्प की आवश्यकता किसी को भी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कोई आत्मा बहुत अच्छी थी, रेगुलर थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा कुछ माया आ जाती है, थोड़ा सा कुछ परीक्षा आ जाती है, तो थोड़ा सा वो कट हो जाते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, बहने तो हमारी पूछती है, लेकिन हमारे क्लास वालों का भी सबका फर्ज बनता है कि कम से कम एक बार उसको कॉल तो कर लो कि भाई आप आते थे, आजकल क्या हुआ, आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, उसको कॉल कर लेंगे तो हो सकता है उसकी गाड़ी फिर से पटरी पे आ जाए। कुछ उसको सहयोग की आवश्यकता है तो अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है तो बताइए। केवल शेयर करने से ही बहुत सारी चीज सॉल्व हो जाती है। तो ये अच्छे कर्म हुए ना, संतों के कर्म यही तो थे ना, इसलिए उनको संत कहते हैं कि एक एक के दुखों को केवल शेयर करके उसकी निवारण बता देना। निवारण करने वाला बाबा बैठा है, हम कोई उसके लिए नहीं बैठे है ना, हमारी ताकत भी नहीं है कि किसी का दुख निवारण कर सके, लेकिन हम उसको रास्ता बता सकते हैं। तो ये करना शुरू करेंगे तो हमारा ब्राह्मण परिवार एकदम मजबूत हो जाएगा। तो हमारे कर्म हमारे ब्राह्मण परिवार से शुरू होते हैं, फिर हम हर किसी के प्रति वैसे ही कर्म शुरू होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमारे कर्म कैसे होंगे स्वमान के आधार से। और फिर स्टेप ये है कि उसका रिजल्ट मैं क्या चाहता हूं। अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को लिया है तो उसका रिजल्ट मैं क्या चाहता हूं, उसमें क्या चाहता हूं, मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए इसलिए मुझे योग करना है, लेकिन नौकरी मिले तो किस लिए मिले, वो भी ठीक है कि हम उसको सहयोग कर रहे हैं हमारी शुभ भावनाओं का कि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन बाबा के तरफ उसकी बुद्धि लगे, वो बाबा की सेवा कर पाए, ये भाव अगर मेरा है तो मेरा कर्म सफल होगा। क्योंकि स्थूल प्राप्तियों के लिए राजयोग नहीं है, राजयोग है आत्मा का राजा बनने के लिए, बनाने के लिए। तो जब हम ऐसा प्रयोग करना शुरू करते हैं तो हम अपने आप में भी एक प्रयोगशाला भी बनते हैं और अपने आप में एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, जो ब्राह्मण सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है उसके रूप में भी हम अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। अभी देखिए पूरे दुनिया में परिस्थितियां इतनी हलचल वाली है, विपरीत हो रही है कि कल क्या होगा नहीं पता। और आप सभी भी अनुभव करते होंगे कि 10 साल पहले 15 साल पहले जो माहौल था, हम किसी को कुछ समझाओ किसी को कुछ सिखाओ तो समझने की शक्ति उनमें थी, सीखने की शक्ति थी, अभी वो शक्ति नहीं है। अभी लोगों को एक सेकंड में सॉल्यूशन चाहिए, एक मिनट में उनका हल चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए। इतने इम्पेशेंट सभी बन गए हैं, इसलिए हम जितना अंदर से भरपूर होंगे उतना ही हमारा संयम ज्यादा झलकेगा। हमने एक्सपेरिमेंट में देखा ना, हमने अपने आप एक्सपीरियंस किया बाबा के साथ जुड़ने का, डिटैच होने का, तो हमारा जो मूवमेंट है कैसे हो गई, योगी जैसी हो गई, स्लो हो गई। तो जब हम मनसा वाचा कर्मणा योग का प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो हमारी मूवमेंट योगी जैसी हो जाएगी, संयमित हो जाएगी, फिर हमें तुरंत कोई चीज उत्तेजित नहीं करेगी, तुरंत रिएक्शन देने का जो हमारा संस्कार है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। रिएक्शन की जगह पे हम क्या देना शुरू करेंगे, रिएक्शन की जगह पे रियलाइजेशन कराना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारा ब्राह्मण जीवन ही अनुभूति वाला ना, हम खुद जो अनुभूति की है दूसरों को अनुभूति कराएंगे तब उनको असर आएगा। तो रिएक्शन जब रियलाइजेशन में चेंज हो जाएगा तभी हम दूसरों को अनुभव करा पाएंगे। तो ऐसे ही बाबा की ये जो प्रयोगशाला है, सबसे पहला प्रयोग तो भगवान ने किसके ऊपर किया, किसके ऊपर किया, ब्रह्मा बाबा के ऊपर, मुझ आत्मा के ऊपर तो किया ना। मेरे जीवन का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, भगवान ने किया। अब थोड़ा सा सोचिए कि बाबा का बनने से पहले मेरी जीवन कैसी थी, कहाँ कुछ वैल्यू नहीं थी, कैसे भले अलग अलग पोस्ट पे सब होंगे प्रोफेशनली लेकिन फिर भी इतना रिस्पेक्ट नहीं था। लेकिन भगवान का बनने के बाद भगवान ने जैसे थे वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लिया पहले तो। तो ये डिस्कनेक्ट होने से पहले भी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। हम रिमार्क दे रहे थे कि ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो है ही ऐसा, इसका संस्कार तो नहीं परिवर्तन होने वाला है। खुद के लिए भी कहते नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है, खुद अपने आप को स्टैंप लगा देते हैं। लेकिन स्टैंप लगाने की जगह पर वो जो व्यक्ति जैसा है उसको एक्सेप्ट करना अलग चीज है, स्टैंप लगाना अलग चीज है। एक्सेप्ट करना मतलब ये ठीक है, इसमें एक कमजोरी है, उस कमजोरी के साथ में जब भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया है तो मैं क्यों उसको डिनाई करने वाला हूं, और वो परिवर्तन होने के लिए ही यहां आया है। इस तरह से अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उस व्यक्ति को, उस आत्मा के प्रति, आत्मा के पास वो हमारी जो शुभ भावना, शुभ कामना की पावर वहां तक पहुंचेगी और हमारा प्रयोग सफल होगा। तो ये जो आपको स्टेप्स लिख के दिए ना, तो यहां से जाने के बाद एक काम आप कीजिए। आपने कई क्लासेस में सुना होगा, सूरज भाई जी भी अपने क्लासेस में बताते हैं, कई क्लासेस में सुना होगा कि 21 दिन का प्रयोग किसी भी चीज को, 21 दिन एक साइंटिफिक रीति से भी होता है कि कोई भी चीज की आदत पड़ने के लिए, एक हैबिट होने के लिए उसको 21 दिन का कालावधि चाहिए। तो अगर हम एक चीज लेते हैं, एक सामान लेते हैं, तो 21 दिन का उसका अभ्यास कीजिए। आपको जो ये चीज बताई ना उसमें रोज बस परसेंटेज में लिखिए कि कितना परिवर्तन हुआ, कितना मैंने सामान का अभ्यास किया, कितना मेरे कर्मों में आया, बस परसेंटेज में लिखेंगे तो अपने आप उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर आप पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद अपने आप को इतना सक्षम और शक्तिशाली पाएंगे कि आप किसी भी परिस्थिति को डील करने के लिए एकदम तैयार रहेंगे, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि यही सेवा होनी है। अभी कुछ समय देखा ना, पहले आपने देखा होगा कितने सारे ड्रोन्स उड़े, कितना क्या क्या हुआ, लेकिन आज हम उस बारे में चर्चा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो पूरा डिफेंड हो गया। अब सोचिए वो अगर जमीन पे आ जाता, नुकसान कर देता, तो आज हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे होंगे होते। तो हमें सफल होने के लिए एक सीख हमको ये भी मिलती है, सफल होने के लिए सबसे पहले हम मजबूत चाहिए, हम पूरी तरह से उसको डिफेंड करने लायक चाहिए, तब किसी का असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। जब हम सक्षम हैं तो फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी आए हम उसको फेस कर सकते, झेल सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सभी बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे अपने आप में बहुत पावरफुल है। एक एक ब्राह्मण आत्मा का संकल्प बहुत शक्तिशाली होता है, एक दो नहीं सैकड़ों हजारों आत्माओं तक उस संकल्प के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। तो हम जितने श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, यहां से मधुबन से तो और एनर्जी भर के आप सभी जा रहे हैं, तो यहां से जाने के बाद इतने श्रेष्ठ संकल्प करें कि आसपास के जो भी वातावरण है, प्रकृति है, आत्माएं है, परिस्थिति है, वो हमारे आधार से, हमारे अनुरूप परिवर्तन हो जाए। क्योंकि नई दुनिया अभी बस कितना समय है, आई की आई, बस हमारे लिए रुके है। हम उस लायक बन जाए तो नई दुनिया बस पहुंची है। हमारे सभी दादियां, सभी बड़े भाई नई दुनिया के तैयारी के लिए पहले से निकल गए, पहले से पहुंच गए, बस हम उसके लिए तैयार हो जाए। ठीक है जी, कर्मातीत अवस्था भी तभी बनेगी ना जब हम उसके लिए अपने अंदर से मजबूत हो जाए। ठीक है, तो आप सबसे मिलके काफी अंदर से ऐसे लगा जैसे अपने परिवार से ही मिल रहे हैं, है ना। ब्राह्मण परिवार की यही तो विशेषता होती है। कल अपने शायद पहली बार मिलते हैं लेकिन ऐसे लगता है एक ही परिवार के हैं। तो आप सभी को मधुबन की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक्स भी है। अभी हम 2-3 मिनट अच्छा पावरफुल रीति से थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रयोग का अभ्यास करेंगे। देखिए, बाबा ने हमको बहुत सारी चाबियां दी है, की दी है ना, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन की कीज दी है, लेकिन उसमें एक मास्टर की दी है जो 5 स्वरूप का अभ्यास है ना, मास्टर की है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम वो अभ्यास अगर करना शुरू करेंगे ना तो उसमें से निकलने का सहज मार्ग हमको मिल जाता है। तो हम अभी 5 मिनट 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। 5 स्वरूप के अभ्यास के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत सारा समय हमको बैठ के ही करना पड़े। हम ऐसा अभ्यास करेंगे जो प्रैक्टिकली अपने जीवन में हम चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सब कुछ भूलकर बस रिलैक्स होकर आत्माभिमान स्थिति में लाल लाइट लगाइए। राजयोग के प्रयोग के लिए आप ये भी कहीं भी यूज कर सकते हैं ना अपने दिन के दिनचर्या में। एक सेकंड में अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझिए। बस मस्तक में चमकती हुई आत्मा, शरीर का बिल्कुल भी भान नहीं, केवल आत्मा, यही मेरा अनादि स्वरूप है। चलिए इस आत्मा स्वरूप में, परम धाम में पावरफुल शिव बाबा बाबा और मैं आत्मा अनादि स्वरूप सब चीजों से परे सब कुछ भूलकर केवल शिव बाबा और मैं आत्मा। बाबा के साथ आकारी स्वरूप में ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में चमकते हुए शिव बाबा, चलिए अपने आदि स्वरूप में सत्ययुगी स्वरूप श्री कृष्ण के साथ सबको सुख देते हुए, सभी सुखी है, सभी खुश है, अपने परिवार वालों को भी देखिए, सभी टिमटिमाती हुई आत्माएं, वो भी सतयुग में देवता स्वरूप में सभी खुश संतुष्ट। फिर पूज्य स्वरूप अपना वरदानी स्वरूप सभी को भरपूर कर रहा हूं। जो भी मेरे परिवार वाले हैं, जो संबंधी है, संपर्क में आने वाले सभी को भरपूर कर रहे हैं। आइए ब्राह्मण स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में चमकते हुए शिव बाबा, बाबा के हाथ में मेरा हाथ, सारी सृष्टि, सारा प्रकृति, सभी स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कराने के लिए भगवान के साथ हम सेवाएं कर रहे हैं। चलिए परिस्ता स्वरूप बनकर सेवाओं के लिए उभर पड़ते हैं। परिस्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में शिव बाबा, परिस्ता स्वरूप मैं खुद, सभी को भरपूर कर रहे हैं। सभी को संतुष्ट कर रहे हैं, सभी को शक्तिशाली बना रहे हैं। अपने परिवार के साथ, कभी अपने ऑफिस वालों के साथ, कभी मित्रों के साथ, पांचों स्वरूप से दिल से बाबा को थैंक्स कहेंगे। थैंक यू बाबा, आपने इस लायक मुझे आत्मा को समझा। थैंक यू बाबा इस अमूल्य ब्राह्मण जीवन के लिए। थैंक यू बाबा इतना अच्छा परिवार के लिए। और थैंक यू बाबा अपने साथ रखने के लिए। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू,
बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी का। आपने बहुत अच्छे हमें भिन्न भिन्न प्रयोग बताए कार्यक्षेत्र में, और उसका प्रैक्टिकल अभ्यास भी कराया। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये फरीदकोट पंजाब पूरा इन अभ्यास को करके आपको रिजल्ट जरूर देगा। देंगे देंगे, जरूर देंगे ये रिजल्ट। और छोटे छोटे अभ्यास हैं और बड़े प्रैक्टिकल हैं, जब आप करेंगे तो बहुत अच्छा। और लास्ट में जो 5 स्वरूप की ड्रिल कराई, ये तो बाबा ने भी कहा हुआ है कि प्रतिदिन 8 बार 5 स्वरूप का अभ्यास हर ब्राह्मण को करना ही है। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः एक हाथ की ताली से हम आभार करते, शुक्रिया प्रकट करते हैं।